हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि आरटी एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने नए पॉडकास्ट के साथ। वो लड़की रानो हर शाम को मंदिर के सामने से गुजरते हुए कोचिंग की तरफ जाती थी। हर रोज़ जब वो उस जगह से गुजरती तो अंदर या तो आरती होती रहती, या तो कोई पूजा करता रहता, या तो दर्शनार्थियों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा रहती और वो उसके सामने से गुजरती हुई निकल जाती। उसी के पड़ोस की दो महिलाएं पुष्पावती लीलावती अक्सर ही उसी समय मंदिर में जाती। कुछ लोगों को जैसे बिना किसी से बात किए, बिना किसी के बारे में बात किए चैन ही कहाँ आता है। कुछ यही उन दोनों महिलाओं का काम था। उनके चर्चा का सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट होता था वो थी वो रानो। ये लड़की कितनी नास्तिक है ना भाभी। हर रोज़ मंदिर के सामने से गुजरेगी मगर अंदर आकर कभी ना तो आरती में शामिल होती है और तो और दूर से भी ये भगवान की मूर्ति के आगे हाथ नहीं जोड़ती। भगवान की मूर्ति के आगे हाथ न जोड़ना, मंदिर के सामने से गुजरकर कोचिंग जाती रहती है, ये क्या तरीका है। लीलावती ने जब मुंह बिचकाकर कहा तो पुष्पावती ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहे हो भाभी, ऐसा भी क्या घमंड जो कि भगवान के आगे सिर ही न झुकाए। यह लीलावती और पुष्पावती की लगभग दिनचर्या का हिस्सा ही था और वो अक्सर ही धीरे धीरे ऐसे समय जाने लगी जब वो सब्जेक्ट जो उन्हें चाहिए वो वहां मिले। एक दिन की बात है, उस दिन रोज की तरह शाम को दोनों वहां पर पहुंची। आज गप्पे हाँकने के लिए एक दूसरा ही नज़ारा मंदिर में था। उन्होंने देखा कि मंदिर के प्रांगण में कहीं से एक कृशकाय पगलिया जो कि गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी वो पड़ी थी। लगभग 2 घंटे वो लोग उसको देखती रहीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, रूखा सा बदन था, बेजान चेहरा, ओंठ सूखे हुए, भूख से सूखी मरी काया। वो पगली प्रसव की पीड़ा से छटपटा रही थी। उसकी दयनीय स्थिति बनी हुई थी लेकिन वहाँ प्रांगण में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने से संकोच कर रहा था। सहारा देना तो दूर की बात। आते जाते सब लोग लगभग उसको घृणा की नज़रों से देख रहे थे। लीलावती और पुष्पावती और उसके साथ वहाँ पर और भी चर्चा करने वाली जो औरतें थीं उनको एक नया सब्जेक्ट मिल गया था। अब क्या होगा दीदी, ये पगली क्या यहीं इसका बच्चा हो जाएगा? तो किसी ने कहा, हाँ अगर मंदिर के प्रांगण में ही हो गया तब तो भाई ये जो मंदिर है इसमें सूतक लग जाएगा, पंडित जी को अनुष्ठान करके उस सूतक के लिए उपाय करना पड़ेगा। हर कोई इस तरीके से अपना अनुभव बघार रहा था। तभी वहाँ से रानो के गुजरने का टाइम हुआ और रानो दूर से दिखी और सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। देखो इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। एक प्रसव से छटपटा रही पगली अर्धनग्न काया उनके सामने पड़ी थी। रानो वहां से गुजरी, उसका भी ध्यान उस पगली पे गया। उसने उसे देखा, कुछ सोचकर अपने पर्स से फोन निकाला और कहीं कॉल किया। फिर सामने की दुकान से एक पानी की बोतल लेके दौड़ के उस पगली के पास आई। अपने बैग को बगल में रख कर वो उस पानी की बोतल से पगली के चेहरे पर पहले छींटे डाली उसके बाद पानी को उसके मुंह में डाला और धीरे धीरे उसको सहला रही थी। सहलाते हुए उसने कुछ देखा और अपना दुपट्टा उठाकर उसकी अर्धनग्न काया को जितना ढांक सकती थी ढांक दिया। इतना करते हुए सबने सुना कि सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस आ गई। नेहा ने एम्बुलेंस की कर्मचारियों की सहायता से उस पगली को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर सरकारी नर्सिंग होम की तरफ चल दी। जाने से पहले वो वहाँ से लीलावती और पुष्पावती और बाकी सारे लोगों को ऐसे देख रही थी मानो उनसे पूछ रही हो। मूर्ति की सेवा ईश्वर प्राप्त के लिए की जाती है तो साकार मूर्ति यानी इंसान में ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता? क्या उसकी सेवा करना जरूरी नहीं है? सच में ताजी का भी यही कहना है। हमारे हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड ये कहते हैं कि आपके सामने और आपके अंदर जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और जो आपके अंदर व्यक्तित्व है सब ईश्वरीय तत्व है। किसी को प्रणाम करना, बुजुर्गों की सेवा करना या बेसहारा को सहारा देना ये ईश्वरत्व का काम होता है। ईश्वर का नाम दिन रात लो और मजबूर बेसहारा ज़रूरतमंद को अनदेखा कर दो, इससे ईश्वर कैसे खुश होंगे? कभी भी ज़रूरतमंद की मदद करने से दिल को जो सुकून मिलता है ना, उसी में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि दिल में ईश्वर का वास होता है। और ईश्वर तो हमारे भाव के भूखे हैं। असली पूजा तो भाव की पूजा होनी चाहिए। और ये स्टोरी मुझे भाई बीरेन सिंह बैस जी के द्वारा संकलन से प्राप्त हुई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत मार्मिक ढंग से कहानियों को लेकर आते हैं। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब बहुत 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 धैर्यवान श्रोता हैं। मेरी कहानियों को धैर्य से सुनने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजलि आरटी ऐसे किस्से लाती रहूँगी। आप लाइक और शेयर करते चलिए और आपके प्यार के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। नमस्ते, बाय बाय।